का था, रूप वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी भाई भाई। दम्मी और छदामी कोरी दोनों भोर होते ही जब हंसिया और गंडासा हाथ में पकड़े काम पर निकल रहे थे तो उन दोनों की घरवालियों में खूब जोर की लड़ाई शुरू हो गई थी। आसपास के लोग सामान्य खटपट और शोर की भांति इस घर के झगड़े और उससे पैदा हुए कोलाहल के आदि बन गए थे। जोर की चीख पुकार और औरतों की गाली गलौज कान में पड़ते ही लोग आपस में कहने लगते, लो हो गई शुरू। यानी जैसे कि आशा थी, आज भी उस प्राकृतिक सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ा। भोर होते ही पूरब में दिवाकर के उदय होने पर जैसे कोई उसका कारण पूछने का साहस नहीं करता, ठीक वैसे ही कोरियों के इस घर में जब दोनों गृहणियों में जंग और गाली गलौज शुरू हो जाती तो फिर उसका कारण जानने के लिए आसपास के किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता। इतना अवश्य है कि यह कलह या रोज रोज का झगड़ा आसपास के लोगों की अपेक्षा दोनों भाइयों को बहुत कम परेशान करता है। इसे घर पर भी वह इसे विशेष परेशानियों में नहीं गिनते। उनके मानसिक भाव ऐसे हैं मानो दोनों विश्व यात्रा का लंबा सफर किसी इक्के में बैठकर काट रहे हैं और उसके बिना कमानी के पहियों के घड़ घड़ शब्द को उन्होंने जीवन यात्रा के विधि विहित सिद्धांतों में ही मिला लिया है। जब भी घर में जिस दिन कोई शोरगुल नहीं होता, चारों ओर शांति ही छाई रहती है, उस दिन किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए इस बात का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। हमारी कहानी का जिस दिन से आरंभ होता है उस दिन संध्या को दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके थके मांदे जब घर लौटे तो देखा कि घर में सन्नाटा पसरा है। बाहर काफी गर्मी है, दोपहर भर खूब जोर की वर्षा हुई और अब भी बादल गरज रहे हैं। हवा का पता तक भी नहीं। वर्षा से घर के चारों ओर का जंगल और घास आदि बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। वहां से पानी में डूबे हुए पटसन के खेत में से दुर्गंध निकल रही है और उसने चारों ओर मानो एक चार दीवारी सी खड़ी कर दी है। गुहाल के पास वाली छोटी सी तलैया में मेंढक टर्रा रहे हैं और संध्या का शांत गगन मानो झिंगरों की ध्वनि से बिल्कुल भर गया है। पास में बरसाती नदी पद्मा नए नए बादलों को घेर कर और भयानक रूप धारण कर चुकी है। अधिकांश खेती को डुबोकर बस्ती की ओर मुंह फैलाए बढ़ रही है। यहाँ तक कि उसने आसपास के दो चार आम कटहल के वृक्षों को उखाड़ कर धरा पर लिटा दिया है और उनकी जड़ें उसके पानी में से झलक रही हैं, मानो वे अपनी अंगुलियों को गगन में फैलाकर किसी अंतिम सहारे को पकड़ने का प्रयास कर रही हों। दम्मी और छदामी उस दिन गांव के जमींदार के यहाँ बेगारी में गए थे। उस पार की रेती पर धान पक गए हैं। वर्षा के पूर्व ही धान काट लेने के लिए देश के गरीब किसान और मजदूर सब कोई अपने अपने खेतों के काम पर पटसन काटने में लग गए हैं। केवल इन दोनों कोरियों को जमींदार के कारिंदे जबरदस्ती बेगारी में पकड़ कर ले गए थे। जमींदार की कचहरी के छपरों में से पानी टपक रहा था। उसकी मरम्मत के लिए और कुछ टटियां बनाने के लिए वे दोनों सारा दिन परिश्रम करते रहे हैं। दो कोर भोजन पेट में डालने का मौका नहीं मिला। दो कोर भोजन तक पेट में डालने का मौका नहीं मिला। कचहरी की ओर से थोड़े से चने खाने को मिल गए थे। इसके अलावा मजूरी मिलनी तो दूर की बात, वहां उन्हें गालियां और फटकार ही मिली। वे उनकी मजदूरी से कहीं ज्यादा अधिक थी। कीचड़ में से किसी प्रकार निकल और पानी में होकर बड़ी मुश्किल से दोनों भाई शाम को घर पहुंचे। देखा तो छोटी बहू चंदा छाती पर आंचल बिछाए चुपचाप औंधी पड़ी है। सावन की बदली की तरह उसने भी दिन भर अश्रु बहाकर आंखों को हल्का किया है और अब शांत होकर हृदय को खूब गर्म कर रही है। और बड़ी बहू अपना मुंह फैलाए द्वार पर बैठी थी। उसका 1.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। दोनों भाइयों ने जब घर में पैर रखा तो देखा कि बच्चा नंग धड़ंग चौक में एक और औंधा पड़ा सो रहा है। भूख से व्याकुल दम्मी ने घुसते ही कहा, उठ परोस खाने को। बड़ी बहू राधा एक साथ जोर से बोल उठी, मानो कागज के ढेर में कोई चिंगारी पड़ गई हो। बोली, खाने को है क्या जो परोस दूं? चावल तू दे गया था, मैं क्या खुद जाकर कमा लाती? सारे दिन की थकान और डांट फटकार सहने के बाद भूखे प्यासे अंधेरे में जलती हुई भूखाग्नि पर घरवाली के रूखे शब्द, विशेषकर आखिरी वाक्य का छिपा हुआ संकेत, दम्मी को सहसा न जाने कैसे सहन न हुआ। क्रोधित सिंह की तरह वह चिल्लाकर बोला, क्या कहा? इतना कहकर उसी क्षण हंसिया उठाकर घरवाली के सिर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी के पास जाकर गिर पड़ी और वहीं पर दम तोड़ दिया। चंदा के वस्त्र खून से लथपथ हो गए। वह हाय अम्मा क्या हो गया कहकर रोने लगी। छदामी ने आगे बढ़कर उसका मुंह दाब लिया। दम्मी हंसिया फेंक कर गाल पर हाथ रखे भोचक्के की तरह पृथ्वी पर बैठ गया। बेटा जग गया और भय के मारे चिल्ला कर रोने लगा। बाहर का वातावरण तब तक पूर्ण रूप से शांत था। अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराकर गांव को लौट रहे थे। उस पार जो लोग धान काटने गए थे, वे 5-5, 7-7 की टोली में एक छोटी सी नाव पर बैठकर इस पार आकर अपनी मेहनत से 2-4 थाने के गट्ठर का सिर पर लादे अपने अपने घर में जा पहुंचे थे। गांव के रामलोचन चाचा डाकखाने में पत्र डालकर घर लौट आए थे और सब कामों से निबट कर चुपचाप बैठे तंबाकू का मजा ले रहे थे। एकाएक उन्हें याद आया कि उनके किसान दम्मी पर लगान के कुछ रुपए बाकी हैं। आज के दिन वह देने का वादा कर गया था। यह सोचकर कि अब वह काम से लौट आया होगा, रामलोचन कंधे पर दुपट्टा डालकर और हाथ में छतरी लेकर उसके घर की ओर चल दिए। दम्मी और छदामी के घर में घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो घर में दिया तक नहीं जल रहा था। आंगन अंधेरे से भरा हुआ था और उस अंधेरे में 2-4 काली छाया दिखाई दे रही थी। रह रहकर बरामदे में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और कोई उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था। रामलोचन ने तनिक शर्माते हुए पूछा, दम्मी है क्या? दम्मी अब तक प्रतिमा के समान चुपचाप बैठा था। अपना नाम सुनते ही वह सिसक सिसक कर अबोध बालक की तरह रोने लगा। छदामी झटपट बरामदे में से उतरकर रामलोचन चाचा के पास आंगन में आ खड़ा हुआ। रामलोचन ने पूछा, औरतें झगड़ा करके मुंह फुलाए पड़ी होंगी, इसी से अंधेरा है क्यों? आज तो दिन भर चिल्लाती ही रही हैं। छदामी अभी तक क्या करना चाहिए इसका निर्णय नहीं कर पाया था। अनेक प्रकार की कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रही थी। अभी तक वह इसी निश्चय पर पहुंचा था कि कुछ रात बीते लाश को कहीं गायब कर देगा। इसी बीच में चौधरी चाचा आ टपके, जिसकी उसे सपने में भी आशा ना थी। तुरंत ही उसे कोई जवाब ना सूझा, कह बैठा, हां आज बहुत झगड़ा हो गया। चौधरी रामलोचन बरामदे की ओर बढ़ते हुए बोले, इसके लिए दम्मी क्यों आंसू बहा रहा है? छदामी ने देखा कि अब बचने की कोई आशा नहीं तो कह उठा, लड़ते लड़ते छोटी बहू ने बड़ी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया है। इंसान आई हुई मुसीबत को ही बड़ा समझता है। उसके अलावा और भी कोई मुसीबत आ सकती है, यह बात शीघ्र ही उसके दिमाग में नहीं घुस पाती। छदामी उस समय इसी सोच में पड़ा हुआ था कि इस भयानक सजा के पंजे से कैसे छुटकारा मिले। लेकिन झूठ उससे भी बढ़कर मुसीबत खड़ी कर सकता है, इस बात का उसे तनिक भी ध्यान ना था। रामलोचन के पूछते ही तुरंत ही उसके दिमाग में जो उत्तर सूझा वही उसने कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर पूछा, ए क्या कहा, मरी तो नहीं? छदामी ने उत्तर दिया, मर गई। इतना कहकर उसके पांव पर गिर पड़ा। चौधरी महाशय बड़े असमंजस में फंस गए। सोचा कि भगवान ने ना जाने संध्या समय कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। कचहरी में गवाही देते देते प्राण सूख जाएंगे। छदामी ने किसी प्रकार भी उनके चरणों को नहीं छोड़ा, बोला, चौधरी चाचा, अब मैं बहू के बचाने के लिए क्या करूं? अभियोग के विषय में परामर्श देने में चौधरी रामलोचन गांव भर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तनिक सोच कर कहा, देख एक काम कर, तू अभी दौड़ जा थाने में, कहना कि मेरे बड़े भाई दम्मी ने शाम पीछे घर आकर खाने को मांगा था। खाना तैयार नहीं था सो उसने अपनी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया है। मैं ठीक बता रहा हूं, ऐसा करने से तेरी बहू बच जाएगी। छदामी का गला सूखने लगा, उठकर बोला, चौधरी चाचा, बहू तो और मिल जाएगी, लेकिन भाई को फांसी हो जाने पर फिर भाई नहीं मिल सकेगा। जब उसने अपनी घरवाली के माथे पर दोष मढ़ा था तब उसने ये बातें नहीं सोची थी। भय के कारण एक बात मुंह से निकल गई, अब भविष्य के विचारों से उसका मन अपने लिए युक्तियां एकत्रित करने लगा। चौधरी ने भी उसकी बात को उपयुक्त माना, बोले, तब फिर जैसा हुआ है वैसा ही कहना। सब ओर से बचाव होना तो बहुत कठिन है छदामी। इतना कहकर रामलोचन वहां से चल दिए और देखते देखते सारे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि कोरियों के घर की छोटी बहू ने गुस्से में बड़ी बहू के हंसिया दे मारा है। बांध टूटने पर जैसे ही बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार कोरियों के घर पुलिस आधम की। अपराधी और निरपराधी सभी उन्हें देखकर घबरा उठे। छदामी ने निर्णय किया कि जिस मार्ग को अपनाया है उसे उसी पर चलना ठीक होगा, क्योंकि उसने चौधरी चाचा के सामने जो बात कह डाली है उसे गांव का बच्चा बच्चा जान गया है। अब यदि कोई और बात कही जाए तो ना जाने उसका फल क्या निकले। उसकी बुद्धि मारी गई। उसने अपनी बहू से अनुरोध किया कि वह इस बात को अपने ऊपर ले ले। सुनते ही उस पर मानो ज्वालामुखी पहाड़ फट पड़ा। फिर उसने धीरज बंधाते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा करने में किसी बात का डर नहीं है। हम लोग तुझे जरूर बचा लेंगे। धीरज बंधा तो सही, पर उसका गला सूख गया और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चंदा की आयु 17-18 वर्ष के लगभग होगी। चेहरा भरा हुआ और गोल मटोल, बदन मंझोला और गठा हुआ, अंग प्रत्यंग गढ़ा हुआ, चाल सुंदर, आसपास के लोगों के घर जाकर गपशप करना उसकी आदत है और बगल में पानी की गगरी लिए पनघट जाते समय वह दो उंगलियों से घूंघट सरकाकर चमकीली चंचल काली आंखों से जो कुछ देखने लायक होती है उसे देख लिया करती है। बड़ी बहू ठीक इससे उल्टी थी। आलसन, फूहड़ और बेश्वर सिर का कपड़ा गोद का बच्चा, घर का काम कुछ भी उससे ना होता था। हाथ में ना तो कोई खास काम काज होता और ना फुर्सत। छोटी बहू उससे अधिक कुछ कहती सुनती ना थी। हाँ, व्यंग में ही दो एक बात कह देती और हाय हाय ही करके क्रोध में बकती झकती रहती और इस प्रकार मोहल्ले भर की नाक में दम करती रहती। पर इन दो गृहस्थियों में भी स्वभाव की आश्चर्यजनक एकता थी। दम्मी देह में कुछ लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, चौड़ी हड्डियां, भद्दी नासिका, दुनिया से बेपरवाह आंखें, ऐसा भोला भाला किंतु भयानक आदमी कोई एक ही होगा। और छदामी ऐसा लगता था जैसे किसी काले पत्थर को बड़ी मेहनत से कोंद कर कोई प्रतिमा तैयार की गई हो। तनिक भी कहीं समानता नहीं। उसका प्रत्येक अंग भारी एवं शक्ति से परिपूर्ण था। चाहे तो ऊंची से ऊंची चट्टान से नीचे कूद पड़े, चाहे किसी पेड़ की टहनियों को एकदम तोड़ दे, हर एक कार्य में उसके चातुर्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। वह बड़े बड़े काले बालों को तेल में डुबो बड़े ढंग से कंधे तक लटकाए रहता था। इससे स्पष्ट था कि वह अपनी देह की सजावट में विशेष ध्यान रखता है और ग्रामवासियों के सौंदर्य की ओर से वास्तव में वह लापरवाह ना था, फिर भी अपनी घरवाली को बहुत चाहता था। दोनों में झगड़ा भी होता और मेलजोल भी, कोई किसी को हरा नहीं पाता था। दोनों ही अनेक खेल को खेलते हुए जीवन की डगर में आगे बढ़े चले जा रहे थे। इस दुर्घटना के कई दिन पहले से दोनों में बहुत अधिक तानातानी चल रही थी। बात यह थी कि चंदा ने देखा कि उसका घरवाला काम के बहाने कभी कभी दूर चला जाता है यहाँ तक कि दो एक दिन बाहर बिताकर घर लौटता है और कुछ कमा धमा कर लाता नहीं। उसके बुरे लक्षणों के कारण वह उस पर कड़ी नजर रखने लगी और ज्यादती भी करने लगी। उसने भी पनघट पर चक्कर काटने शुरू कर दिए और मोहल्ले भर में खूब घूम घूम कर घर आकर काशी प्रसाद के मझले बेटे की बहुत प्रशंसा करने लगी। इसका परिणाम यह निकला कि छदामी के दिन और रातों में मानो किसी ने जहर घोल दिया। काम धंधों में उसे पल भर के लिए चैन नहीं पड़ता। इसके लिए उसने एक बार भाभी को खूब डांटा फटकारा। जवाब में भाभी ने खूब हाथ हिलाकर झमक झमक कर उसके स्वर्गीय बाप को संबोधन करके कहना शुरू कर दिया, वह औरत आंधी से भी तेज भागती है, मैं उसे संभालूं? मैं तो सब कुछ समझती हूं, किसी दिन खानदान की नाक कटा देगी। बगल के कोठे में चंदा बैठी थी। उसने बाहर आकर धीमे स्वर में कहा, दीदी तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? बस फिर क्या था, दोनों में महाभारत छिड़ गई। छदामी ने गुर्राकर कहा, देख अब की अगर सुना कि तू अकेली पनघट पर गई है तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चंदा ने भभक कर कहा, तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाएगा। और कहती हुई वह बाहर जाने को तैयार हो गई। छदामी ने उसकी चुटिया घसीट कर उसे कोठे के भीतर धकेल दिया और बाहर से दरवाजे में ताला डाल दिया।
अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी भाई भाई का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।